मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के ऑडियो लेक्चर में मैंने आपसे जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर था उसके बारे में कुछ बातें की थी और इनफैक्ट सिलेबस के बारे में और फिर जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और उसको थोड़ा सा हम लोगों ने जो 2018 के एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर से कंपेयर किया था। इससे क्या है कि हमारी एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है विषय के बारे में और सीधी सी बात है कि जब विषय के बारे में पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो भविष्य की आपको तैयारी कैसे करनी है उसकी भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगती है। इस ऑडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे जो क्वेश्चन पेपर आया है उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट सच पूछे तो क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि देखिए जो आपकी प्रिपरेशन होती है एग्जामिनेशन के लिए, एक तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन होती है यानी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, पढ़ना ही चाहिए। ये बात अलग है कि जब आप सिलेबस से तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ टॉपिक को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, कुछ को थोड़ा कम देते हैं, कुछ को सामान्य तरीके से ही पढ़ करके काम चला लेते हैं और वो गलत भी नहीं है क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं सभी समान वजन के कतई नहीं होते और तैयारी करते समय आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद एग्जाम की तैयारी में लगते हैं तब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। सच पूछिए तो हमारे लिए पाठ्यक्रम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना इम्पॉर्टेंट यह होता है कि उस पाठ्यक्रम को आधार बनाकर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। पाठ्यक्रम वही हो सकता है, उसी पाठ्यक्रम से बहुत कठिन किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि जो सिविल सर्विस से भी बहुत हायर लेवल के हों, या पाठ्यक्रम वही हो सकता है जिसमें बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो सामान्यतः हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए केवल पाठ्यक्रम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वह भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम अभी थर्ड पेपर के क्वेश्चंस के पैटर्न पर बातें करेंगे। देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, ये आप जानते ही हैं, शुरू के 1 से 10 तक उसी तरह से 10-10 मार्क्स क्वेश्चन हैं जिसमें जो आपको 150 शब्दों में लिखने हैं और बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 250 शब्दों में लिखने हैं और वो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जैसा कि मैंने इसे ठीक पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि इस बार का जो पेपर है थर्ड पेपर इनफैक्ट सही मायने में काफ़ी कुछ सरल पेपर है, पिछले साल के आसपास ही है अगर हम कुछ प्रश्नों को छोड़ दें तो। जैसे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इन 20 क्वेश्चंस में सच पूछिए तो 12-13 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट पूछे गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन उतना सीधा सरल भी नहीं है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग है लेकिन वो ट्विस्टिंग भी ऐसी नहीं है जो आपको उलझा सके, आपको सोचने को मजबूर कर दे कि इसमें मैं क्या लिखूं, या फिर आप थोड़ी देर सोचने लगे कि अच्छा ये पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा और तब जाकर के आप लिखना शुरू करेंगे, ऐसी ट्विस्टिंग भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 12-13 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की गई है और इनफैक्ट सच पूछे तो उलझाने की कोशिश भी नहीं करना कहना चाहिए, ज़्यादा सही यह कहना होगा कि उनमें थोड़ा सा चूंकि करेंट अफेयर से उसे जोड़ दिया है और यूं कह लीजिए कि आपके सिलेबस में भी वो डायरेक्ट चीज़ें नहीं हैं तो उन पर उत्तर लिखने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा भी जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आइए, बेहतर होगा कि मैं उदाहरण भी देता चलूं तो उससे थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सकेगी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपको सुनने में बहुत सामान्य सा ही लगेगा लेकिन इनफैक्ट जब आप उस पर लिखना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, जब आप इंक्लूजन समावेशिता के बारे में पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है धारणीयता, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब बात तो सही तरीके से कही गई है, और सच पूछिए तो जो इंक्लूजन का टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है, उसी से ही सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि आप एकदम उत्साहित हो गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन ये है तो लिखना शुरू कर दिया होगा। अब आप देखिए कि उसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग उन्होंने की है, एक साथ समावेशिता और धारणीयता, तो केवल इन दोनों को लेकर के आपको इन दोनों की जुगलबंदी को दिखाना है, खासकर इंक्लूसिव ग्रोथ के संदर्भ में। इसे इंग्लिश में मैं आपको पढ़ देता हूं। इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंटेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टूगेदर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में से है जो उन्होंने थोड़ी सी ट्विस्ट करके आपको परोसा है, आप कह लीजिए। अब मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ठिठकेंगे। इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, इसके बारे में हम कैसे लिखें। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है, जैसे एक समुद्र है, आप समझ लीजिए, आप ये बताइए कि समुद्र में पानी कहाँ से आया है। उसके पास अपना तो कोई स्रोत है नहीं कि वहाँ से पानी पैदा हो रहा है, जैसे कि झील का होता है या पाताल तोड़ कुएं का होता है, उनमें अपना ही पानी होता है। समुद्र में पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हुआ है, कितनी नदियाँ समुद्र में लगातार 24 घंटे पानी उड़ेल रही हैं, और इसके कारण वो समुद्र बन गया है, है ना, पानी का इतना बड़ा स्रोत, पानी का इतना बड़ा रिजर्वायर। सच पूछे तो जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन होती है, और स्पेशली जनरल स्टडीज की, वो कुछ समुद्र टाइप का ही है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके पास अपने रिसोर्सेज हो, अपने सोर्स हो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ते रहते हैं, क्या क्या पढ़ते रहते हैं। आप देखिए, जब अखबार न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो पता नहीं कितनी घटनाएं आप सुनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो जरूरत है बस उसी को सुन रहे हैं, सुन तो आप सभी रहे हैं, उसमें से जो जरूरत है आप उसको अपने पास संजो के रख ले रहे हैं। तो आपके पास भी जो चीजें हैं वो समुद्र की तरह होती है। इसकी एक क्षमता यह होती है, या यूं कह लीजिए कि एक जादुई प्रभाव यह होता है कि अगर कोई बिल्कुल नया टॉपिक आपको दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल साइंस का या अंतरिक्ष का या रॉकेट साइंस का कोई टॉपिक दे दिया गया, वो सामान्य किस्म का टॉपिक जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में कुछ कहने की क्षमता रखते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोचेंगे कि क्या पूछ लिया गया और आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह का देखिए, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको सुना रहा हूं, वो है उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान। अब उन्होंने शब्द यूज कर दिया उत्तर उदारीकरण। अब हो सकता है कि ये शब्द आपने इससे पहले नहीं सुना हो, खासकर इंग्लिश के अखबारों में इस तरह के शब्दों का यूज मैंने देखा है, लेकिन हिंदी के अखबार इस तरह के शब्दों के प्रयोग नहीं करते कि उत्तर उदारीकरण, जिसको आप कहेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो ठीक है, उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में, देखिए बजटिंग तो आपके सिलेबस में है और बजट निर्माण इनफेक्ट यहां भले ही ना हो, लेकिन सेकेंड पेपर में तो आपका है कि किस तरह से हमारे पार्लियामेंट से बजट पारित होता है, आपने उस पर पढ़ा भी है बजट निर्माण के संदर्भ में, तो अब यहां उसका नॉलेज आपके काम आ रहा है। लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। लोक व्यय प्रबंधन, अब आप देखिए इंग्लिश में है ये, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लेरिफाई इट। केवल आपको स्पष्ट करना है, कोई एग्जामिन नहीं करना है, कोई एनालिटिकल एनालिसिस को नहीं करना है, सिंपल तरीके से इसको स्पष्ट करना है कि बताइए जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने तो अपनी बात एक लाइन में कहकर खत्म कर दी, अब आप हमें समझाइए। अब आप देखिए कि उत्तर उदारीकरण, ये आपको अपने ढंग से समझना होगा कि ये उत्तर उदारीकरण क्या है। तो सीधी सी बात है कि 1990 से उदारीकरण शुरू हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उदारीकरण का स्वरूप थोड़ा सा अब उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया है। तो उत्तर उदारीकरण, राइट, मतलब अब उदारीकरण का आप ये कह लीजिए कि अगर हम अंतिम चरण माने तो आप इसको अंतिम चरण कह लीजिए। सन 1990 से लेकर के 2010 के पीरियड को आप प्री लिबरलाइजेशन पीरियड कह लीजिए, और 2010 के बाद के समय को आप पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड कह लीजिए। ये समय हो गया, तो समय आपने निर्धारित कर लिया। बजट आपको मालूम है कि बजट निर्माण के संदर्भ, मतलब कॉन्टेक्स्ट है बजट का। लोक व्यय प्रबंधन मतलब जो हम पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप देखिए कि जब हम लोक व्यय की बात करते हैं तो आपको लोक व्यय को समझना पड़ेगा कि यहां पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर से यहां जो मतलब है, एक तरीके से यूं कह लीजिए कि जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, एजुकेशन सरकार मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है, करना चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो हेल्थ सेक्टर में उसे प्रोवाइड करना चाहिए, जो वीकर सेक्शन है उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं उनके लिए उसे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे एक तरह से लोक व्यय है। अब इनका प्रबंधन, इसका सही तरीके से प्रबंध हो, यह एक बेसिकली चैलेंज हो गया है। अब आप इसमें बताइए, आप इसे चाहे तो निबंध के रूप में भी ले सकते हैं कि क्या चैलेंजेज हैं, क्यों चैलेंजेज हैं, किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आपने ज़्यादा कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करने के कारण सरकार के सामने एक विचित्र किस्म का कॉम्पिटिशन आ गया है, अब क्या करे सरकार, तो एक चैलेंज आपको दिख रहा है। तो अगर आपके दिमाग ने इतना सब सोच लिया, थोड़ा सा भी सोच लिया, या यूं कह लीजिए कि एक क्लू आपके हाथ में आ गया, तो मान करके चलिए कि बात बन गई और आप कुछ ना कुछ लिखाएंगे। 250 शब्दों में लिखना, 250 शब्द कोई ज्यादा नहीं होते। अगर आपने 3-4 पॉइंट भी सोच लिए ना, तो आप उन्हें एलोबरेट कर दीजिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें 10 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। देखिए जो पढ़ी हुई बातें होती हैं उन्हें हम ज्यादा सटीक तरीके से लिख पाते हैं, ये तो सोची हुई बात है। तो फिर भी आपको बड़े आराम से 10 में से 4 4.5 तो मिल ही जाएंगे। और आप सोचिए कि एक ऐसे प्रश्न पर जिसकी तैयारी आपने नहीं की है, अगर उसमें भी आप 4.5 स्कोर कर ले रहे हैं, जो कि इसका एवरेज होता है, 20 क्वेश्चंस का ये लगभग एवरेज आप मान करके चलिए कि मतलब टोटल 250 में तो हम नहीं मानते कि 4.5, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मानिए कि आप 45% अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपके एवरेज स्कोर में आप पहुंच गए। कुछ क्वेश्चंस में आप ज्यादा स्कोर करेंगे जो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, तो आप बड़े आराम से 120 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे आउट ऑफ 250, और ये बहुत ज्यादा होते हैं जनरल स्टडीज की दृष्टि से, इसे आप कम मत समझिएगा। मित्रों जो बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है, देखिए सरल से क्वेश्चन के बारे में तो मुझे पढ़ करके बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि इस क्वेश्चन के उत्तर में तो मैंने बकायदे जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की है, एग्जैक्ट यही इसी को लेकर के रिकॉर्डिंग की है कि सरकार कैसे उसको ऑनलाइन कर रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अनाज वितरण में जो गड़बड़ी होती है उन गड़बड़ियों को रोका जा सके। स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा जो चैलेंजिंग है, जिसकी संख्या लगभग 5-6 हैं ऐसे प्रश्नों की, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि वो एक प्रकार से थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन है जो आसान नहीं है, राइट। मैं एक क्वेश्चन केवल आपको पढ़ करके समाप्त करूंगा, उसमें चूंकि जटिलताएं हैं तो जटिलताओं के बारे में बात करने का भी यहां कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या कम है और थर्ड पेपर में सच पूछे तो कम ही होती है। 2013 का पेपर तो खैर बहुत ही कठिन था जब इसके इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी, अब काफी स्थितियां जो है बेहतर हो गई हैं। देखिए करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में विध विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 और NIA अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विध विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन जितना लंबा होगा आप ये समझ लीजिए कि उतने ज्यादा हम उलझते जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं दोस्तों। मैंने इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द एंटी टेररिज्म लॉज बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज इन ब्रैकेट प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड द NIA एक्ट। आपको मालूम होगा कि इन दोनों एक्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी और उस समय मैंने कहा था कि ये दोनों परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन है। analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reason for opposing the UAPA by human rights organization. दोस्तों ये केवल जुलाई की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं. मेरे डेली ऑडियो लेक्चर अभी भी अवेलेबल हैं, वो तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप चाहें तो उसमें जा करके देख सकते हैं. बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैंने बातें की हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, वो अमेंडमेंट क्यों किए गए हैं, क्योंकि इससे एनआईए के हाथ मजबूत हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल इसी पर मैंने बात की है. अब बस फर्क इतना ही है कि जिसे हम जानते हैं वो हमें थोड़ा सरल लगने लगता है और जिसे हम नहीं जानते वो थोड़ा कठिन लगने लगता है. तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कि जो जनरल स्टडीज़ का थर्ड पेपर है वो बहुत ही, आप यूँ समझ लीजिए कि प्यारा ही पेपर है, आपके कमांड में है. अगर थोड़ी सी भी ठीक तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाना, जो मैं कहना चाहूँगा कि 120 मार्क्स ला पाना, कोई बहुत दूर की कौड़ी बिल्कुल भी नहीं है. आपकी तैयारी इसी दिशा में आगे बढ़े और आप इससे और भी बेहतर मार्क्स ला सकें, मेरी शुभकामनाएं हैं मित्रों इसके लिए. और इसी के साथ ही अब आपकी अनुमति भी चाहूंगा इसे समाप्त करने के लिए. नमस्कार.